सानवी को ये बात अब याद नहीं थी कि इंद्र को रिया को उसका नंबर किसने दिया था। वो भूल चुकी थी कि उन्होंने पार्टी में मुलाकात के दौरान किसी डॉग सेंटर चलने की बात की थी। आज रविवार था, कॉलेज की छुट्टी तो थी लेकिन उसे काम पर जाना ही था, सफाई और खाना बनाने के लिए। सुबह वो आराम से उठे ही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने संकोच के साथ फ़ोन उठाया। हेलो, कैसी हैं आप? आवाज़ इंद्र की थी। माफ़ कीजिए, आप कौन? सानवी ने पूछा। उसे आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी मगर नाम याद नहीं आया। मैं इंद्र बोल रहा हूँ, हम लोग कल पार्टी में मिले थे, डॉग सेंटर चलने की बात हुई थी, इंद्र ने बड़े सहज स्वर में कहा। ओह सॉरी, मुझे आपका नंबर सेव नहीं था, सानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, आज संडे है, चलें वहीं। आप कह रही थी कि आपको डॉग्स बहुत पसंद है। इंद्र को किसी भी तरह उसके साथ समय बिताना था। एक पल के लिए सानवी सोच में पड़ गई लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अगर आप पहले बता देते तो मैं फ्री रहती, मैंने आज का प्लान पहले से बना लिया है, कुछ काम है, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ अकेले जाने की। इंद्र को समझ आ गया कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो बोला, जिस दिन आप फ्री होंगी मैं आपके साथ ही चलूंगा, हम फिर कभी प्लान बना लेंगे। सानवी ने राहत की सांस ली, उसे इंद्र के साथ नहीं जाना था। सानवी के फ़ोन रखते ही उसकी दोस्त रिया ने उसे डांटा, पागल हो गई है क्या, इतना अमीर लड़का तुझसे बात कर रहा है, साथ में घूमना चाहता है और तू इनकार कर रही है, पूरी ज़िंदगी खाना बनाकर गुजारनी है क्या? क्या करूँ यार, बेवकूफ़ हूँ शायद, सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगर वो तुझ में इंटरेस्ट ले रहा है तो तुझे भी कम से कम सोच तो लेना चाहिए, देख किसी अमीर लड़के से शादी कर ले, सेटल हो जा, रिया अपनी दोस्त को समझा रही थी। रिया, तो मुझे अच्छे से जानती है, मुझे ना शादी करनी है ना ही किसी की कमाई पर जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीनी है, ऐसी बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सानवी ने दृढ़ता से जवाब दिया। राजवंश हाउस। रविवार का दिन था, आर्यन राजवंश अपनी माँ मिसेज राजवंश के घर लंच पर आया था। वहाँ उसकी बहन अन्या, जीजा जगतराज राठौर, उसका दोस्त शिव मेहता और भांजा जय भी मौजूद थे। सभी लोग लॉन में लगे खाने की टेबल के पास बैठे थे। मिसेज राजवंश जय को अपने पास बिठाकर अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी। उन्होंने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुझे कितनी बार फ़ोन किया मगर हर बार एक ही जवाब मिलता है, मॉम बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, आज तो फुर्सत मिल ही गई तुझे। मॉम ऐसी बात नहीं है, काम बहुत बढ़ गया है, टाइम निकाल पाना मुश्किल हो गया था, आर्यन सफाई देने लगा। इतना भी क्या बिजी होना कि अपनी माँ के लिए टाइम ही ना हो, मिसेज राजवंश नाराज थी। मॉम आप नहीं जानती, ये हम सबसे सिर्फ काम की बात करता है, जैसे हम इसके बिजनेस पार्टनर हैं, कोई रिश्ता नहीं है, जगतराज ने चुटकी ली। सच कहूँ तो मुझे ये सिर्फ फाइल्स के लिए फ़ोन करता है, वो प्रेजेंटेशन तैयार हुआ या नहीं हुआ बस, अन्या ने शिकायत की। मैं तो इसका दोस्त हूँ मगर लगता है जैसे मैं कोई असिस्टेंट हूँ, सिर्फ काम की बात करता है, शिव मेहता भी हंसते हुए बोल पड़ा। सभी आर्यन की शिकायतों की झड़ी लगाए बैठे थे। आर्यन मुस्कुरा रहा था सबकी बातें सुनकर। लगता है मुझे भी कंपनी में जॉब कर लेनी चाहिए, फिर तो तू मुझे भी फ़ोन करेगा, मॉम फाइल तैयार है, मिसेज राजवंश ने मजाक में कहा। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं तो मामा के घर अक्सर खेलने जाता हूँ, जय ने कहा, वो आर्यन के सबसे करीब था, सब जानते थे कि आर्यन को जय के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मिसेज राजवंश थोड़ी गंभीर हो गई, आर्यन बेटा मुझे लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। अब माँ बेटे अकेले बैठ गए थे। माँ, मेरा अनुभव आप जानती हैं, मुझे सच में किसी के साथ शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, शादी नहीं करनी तो कम से कम एक गर्लफ्रेंड तो बना लो, माँ मुस्कुराकर बोली। मॉम प्लीज, आर्यन हंसने लगा और खड़ा हो गया। देख बेटा, अगर कभी कोई लड़की पसंद आ जाए तो सबसे पहले अपनी मॉम को बताना। ओ मॉम, वो धीरे से मुस्कुराया और वहां से चला गया। दृश्य, आर्यन का घर। संडे शाम, सानवी आर्यन के घर पर सफाई और खाना बनाने के लिए पहुंची थी। उसके कानों में हेडफोन थे और वो अपने काम में मग्न थी। उसे पता था कि आर्यन आज बाहर है और हमेशा की तरह रात को ही आएगा। उसने पहले रसोई में खाना बनाया, फिर घर की डस्टिंग शुरू की। घर बहुत बड़ा नहीं था, एक हॉल, तीन बेडरूम, एक किचन, एक ड्राइंग रूम और लॉन के पास कुछ स्टाफ क्वार्टर्स। सानवी रसोई का काम पूरा कर चुकी थी, अब वो घर के हॉल और कमरों की डस्टिंग में लग गई थी। बालों को क्लिप से पीछे बांधा हुआ था और कानों में वायर वाले हेडफोन, जिनसे उसकी दुनिया में अभी एक क्लासिकल सॉन्ग बज रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, उसके होंठ साथ साथ गुनगुना रहे थे। उसे ये पता नहीं था कि आज आर्यन जल्दी लौट आया है। आर्यन राजवंश की कार इलेक्ट्रॉनिक गेट से धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। गाड़ी रुकने की आवाज़ बेहद हल्की थी मगर घर के स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ झांकते हुए किसी ने भी नोटिस नहीं किया। आर्यन कार से उतरा, ब्लैक टी शर्ट और बेज ट्राउजर, हाथ में मोबाइल और फाइल का ब्राउन लेदर कवर। वो अपनी मॉम के घर से लंच के लिए गया हुआ था। वाहन 12 बजे वापस लौटा था। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और भीतर चला गया। आर्यन ने कोट उतारा, घड़ी उतारी और मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया। हल्का सा फ्रेश होकर वो बाहर की ओर निकला कि पानी पी सके। जैसे ही वो हॉल की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी आहट सुनाई दी, किसी के चलने की। कोई बहुत धीमे धीमे मगर लगातार कदमों से एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रहा था। उसका माथा सिकुड़ गया। कौन है, उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। उसने जल्दी से सोफे के पास पड़ी छड़ी डेकोरेटिव स्टिक उठाई। लगता है कोई घुस आया है। उसके कदम बेहद धीमे मगर सतर्क हो चुके थे। दूसरी तरफ हॉल के साइड बेडरूम में सानवी हल्के हाथों से दीवारों के कोने साफ कर रही थी। हाथ में पोछा था और उसकी नजरें छत की ओर थी। संगीत में खोई हुई उसे आर्यन की आवाज या कदमों की आहट का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, आर्यन भी कोने से घूमकर सामने आ गया। तुम, आर्यन। अरे, सानवी। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को चोर समझ लिया। आर्यन ने बिना कुछ सोचे डंडा उठाकर आगे किया। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज गंभीर थी और आंखें सवालों से भरी हुई। सानवी हड़बड़ाई मगर तुरंत खुद को संभालते हुए पीछे हट गई। तुम यहाँ कैसे घुसे? मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था, तुम वही हो? आर्यन रुक गया, उसके माथे पर एक रेखा खिंच गई। ओ वाओ, मतलब तुम मुझे चोर समझ रही हो, और वो भी मेरे ही घर में? सानवी पल घर को चुप रही, फिर बोली, मैंने तो सोचा कोई अंदर घुसाया है, मैं तो यहाँ काम करती हूँ। काम? किसने रखा तुम्हें? आर्यन का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। तो अब मैं चोर बन गया, वाह! सानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो घबरा गई। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा कोई घुस आया, और मेरे कान में हेडफोन था तो गाड़ी की आवाज भी नहीं सुनी। तो क्या वो तुमसे जो घर में खाना पकाती हो? आर्यन सोचते हुए बोला। जी मैं ही हूँ, उसने कहा। और वो नोट भी तुम ही लिखती हो? देखिए ना सर। वो झुककर उठाने लगी मगर उसका हाथ कांप रहा था। आर्यन थोड़ा नरम पड़ा मगर अब भी हल्की मुस्कान उसकी आंखों में थी। सानवी थोड़ी शर्मिंदा, थोड़ी परेशान और थोड़ी हैरान थी। ये पहली बार था जब वो आर्यन से मिली थी, वो भी इस हालत में। मैं फिर से माफी चाहती हूँ, मैं बस डस्टिंग कर रही थी और आप अचानक? और तुम अचानक? आर्यन ने बात काटते हुए कहा।
वो अपनी बाल्टी और सफाई का सामान लेकर बाहर निकल गई मगर जाते जाते उसने एक बार आर्यन को मुड़कर देखा और आर्यन वो वहीं खड़ा था।